भागवत सार की श्रृंखला में चौथे स्कंद के 21वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। इसके 31वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे और फिर अध्याय पर चर्चा होगी। कृपया दोहराइए। यत्पाद सेवा भिरुचि तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितं मलंधिया। सद्याक्षिणोत्यन्वहमेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरे। यत्पाद सेवा भिरुचि तपस्विनां अशेष जन्मोपचितं मलं धियः। सद्याक्षिणोत्यन्वहमेधति सती यथा पदांगुष्ठविनिसृता सरी। यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विना अशेष जन्मोपचितं मलं धियः। सद्याक्षिणोक्त्यन्वहमेधति सती यथा पदांगुष्ठविनिसृता सरी। यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विना के चरण कमल की सेवा सेवा अभिरुचि ही रुचि तपस्विनाम कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति अशेष असंख्य जन्म जन्म उपचितम ग्रहण करते हैं मलम गंदगी धियः मन सद्यः शीघ्र क्षिणोति नष्ट करता है अन्वहम प्रतिदिन एधति बढ़ने वाली सती होते हुए यथा जिस प्रकार पदांगुष्ठ चरण कमलों के अंगूठे से विनिश्रिता निकला सरीत जल। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस प्रकार भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा सब गंगा का जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। तात्पर्य, भारत में यह देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वह प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कलकत्ता के एक अत्यंत सम्माननीय ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। बीमार पड़ने पर वह केवल गंगा जल पीते थे और थोड़े ही समय में अच्छे हो जाते थे। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ता के निकट से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती हैं, तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। यह गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की ऐसी महिमा है क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। अतः पृथु महाराज उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं, चाहे वह तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही पृथु महाराज संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध हो ले। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्य के सारे पाप कर्म फल दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी है जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करते हैं। शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेते हैं। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए नियमों का पालन करता है तो वो शुद्ध रहता है और भौतिक कलमश से दूषित नहीं होता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करते हैं शिष्य के सारे पापों को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाएं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सनातन गोस्वामी की प्रार्थना को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। 21वां अध्याय है। धीरे धीरे जैसे भागवत के अध्यायों पर चर्चा बढ़ रही है, प्रयास कीजिए कि हर अध्याय से किसी एक गुण को सीख लें, ऐसे गुण जो भक्ति के लिए आवश्यक हैं, दिव्य गुण। ये दिव्य गुण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सारे गुण भगवान में हैं और ये ऐसे गुण हैं जो हमें दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें दिव्य गुण कहा जाता है। तो पिछले 2-3 अध्यायों से हम लोग कुछ गुणों की चर्चा भी करते आ रहे हैं। जैसे जैसे अध्याय बढ़ रहे हैं, उस अध्याय में किस गुण को दिया गया है, जैसे हमने पिछले से पिछले अध्याय में ईर्ष्या रहित होना सीखा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे क्षमा करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है क्षमा करना, और आज के अध्याय में भी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण गुण को पृथु महाराज प्रकट करेंगे। तो इस अध्याय के पहले 10 श्लोक ये विदुर के प्रश्न हैं और उससे पहले थोड़ा बहुत वर्णन है पृथु महाराज का। तो ये 10 श्लोक हैं। आगे मैत्री मुनि वर्णन करते हैं कि जब यज्ञ हो गया, पृथु महाराज वापस अपने महल में आए तो कैसे वहां के नागरिकों ने स्वागत किया। बहुत सुंदर सजाया हुआ था, सारा वर्णन है कि कैसे महल को सजाया था, कैसे सड़कों को सजाया था और उनको सारे प्राकृतिक पदार्थों से उसको सजाया हुआ था। आजकल तो हम लोग सजावट करना चाहते हैं तो प्लास्टिक और कपड़े या कागज, प्लास्टिक और कागज बनाकर कुछ स्वागत हो जाता है, कुछ लग जाता है, लेकिन जब भगवान का स्वागत होता है तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्वागत स्वाभाविक नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे होना चाहिए। तो यहाँ वर्णन है कि कैसे पृथु महाराज के स्वागत के लिए सड़कों को सजाया गया, तोरण बांधे गए पत्तों से, फूलों से, फलों से। ऐसा वर्णन है कि सड़कों पर, चौराहों पर फलों को बांधा गया था, फलों से सजाया गया। तो हम सोच रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर आजकल ऐसा होता, हमें कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, है ना, बस वो सजा हुआ है वहीं से तोड़ लेना चाहिए। तो फूलों से, फलों से, पत्तों से इससे सजावट की गई थी। और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे अन्न, अलग अलग प्रकार के अन्न किए गए। और फिर कुमारियों को लाया गया उनकी आरती इत्यादि करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कुमारी कन्याएं होती हैं इनको बड़ा शुभ माना जाता है। जब भगवान की स्थापना प्रतिष्ठापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें भी कुमारी लड़कियों को बुलाकर भगवान को अलग अलग चीज़ों का दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये बड़ा शुभ होता है क्योंकि वे अंदर से और बाहर से शुद्ध होती हैं, इसीलिए उनको बड़ा शुभ माना गया है। ऐसे अवसरों पर उनको लाया जाता है, उनके द्वारा भगवान की सेवा होती है। तो ऐसे भगवान की सेवा होती है तो पृथु महाराज जब आए तो ऐसे अलग अलग तरीकों से उनका स्वागत किया गया, बड़ा विशाल। और इसको कहते हुए एक महत्वपूर्ण बात मैत्री मुनि कह देते हैं कि हालांकि इतना स्वागत हो रहा था, इतना मान सम्मान दिया जा रहा था, इतना ऐश्वर्य था, लेकिन पृथु महाराज इससे प्रभावित नहीं हुए। उनके हृदय में कोई अहंकार नहीं आया कि देखो मैं कितना बड़ा राजा हूं, देखो मेरी प्रजा कैसे मेरा स्वागत करती है, हाँ ये सब मेरे लिए है, ऐसा करना चाहिए। कोई अहंकार नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं आया। ये महत्वपूर्ण बात, ये एक गुण हम पृथु महाराज से सीख सकते हैं आज के अध्याय में। वैसे आज के अध्याय में कई गुणों को और सीखेंगे। तो पृथु महाराज अपने उदाहरण से दिखला रहे हैं कि जितना भी ऐश्वर्य है, और कितना ऐश्वर्य होगा आप सोचिए एक राजा का जो सारी पृथ्वी के राजा हैं। हम लोग तो अपने घर के भी राजा नहीं बन पाते लेकिन अहंकारी हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति एक छोटा सा परिवार चलाता है और उसको अहंकार हो जाता है कि मैं इस परिवार का कर्ता धरता हूं, मेरे बिना परिवार चल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पृथु महाराज जो सारी पृथ्वी के राजा हैं, कोई अहंकार नहीं, उससे प्रभावित ही नहीं हुए। ये सब स्वागत, इतनी सारी व्यवस्था, सजावट की गई, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको और बहुत सारी चीजें वैदिक शास्त्र के अनुसार किए गए, पृथु महाराज कोई प्रभावित नहीं, कोई अहंकार नहीं, मान रहित रहे। ये एक महत्वपूर्ण गुण भक्तों में होना चाहिए, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान की कृपा से बहुत सा मान सम्मान आता है। एक साधारण सा भक्त जो भले ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, वो भी जब भगवान की भक्ति करने लगता है उसको भी मान सम्मान आ जाता है। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। हम मणिपाल में जाते हैं प्रचार के लिए, तो
कुछ कोर्स किया और थोड़े क्लासेस के बाद एक लड़का जो डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसने इस मार्ग को गंभीरता से ले लिया। जब कर रहा है, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, केवल भगवान का प्रसाद लेता है, तो ऐसे प्रयास कर रहा है कि वो भी भगवान की भक्ति। अभी अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ शुरू किए हुए, लेकिन वो बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने, अब देखिए कैसे वातावरण में, पूरा भौतिक वातावरण है वहाँ, वहाँ कोई वैकुंठ का वातावरण नहीं है कि सब लोग भक्त हैं और आप भक्ति करोगे तो आपका गुणगान होगा। वहाँ तो ऐसा वातावरण है कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसको नीच माना जाता है, हीन दृष्टि से देखा, ये सब क्या भक्ति भक्ति, अरे कुछ खाओ पियो मजा करो, ये क्या ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे वातावरण में अब उसने भक्ति करनी प्रारंभ की, तो धीरे धीरे, शुरुआत में तो कष्ट हुआ, लोगों ने कहा ये क्या हरे कृष्णा लगा रखा है, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे लोग, अन्य जो विद्यार्थी हैं, वो उनको फोन करते हैं, उनके पास आते हैं, अच्छा हमें ये बताओ कैसे करना है, थोड़ा ये बता दो, मेरे जीवन में ये कष्ट है, कैसे मैं, उसको मान सम्मान मिलने लगा है। तो उसने हमें फोन किया कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये क्या हो रहा है, हाँ कि लोग आके मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तो खुद कुछ पता नहीं है, मैं तो आपसे पूछता हूँ लेकिन ये लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं और मैं बता भी रहा हूँ। उसको आश्चर्य ये है कि लोग पूछते हैं और मैं बताता हूँ और वो संतुष्ट हो जाते हैं। हमने कहा ये भगवान की कृपा है कि व्यक्ति अभी उसने शुरू किए, खुद को कुछ समय नहीं हुआ, 2 साल पहले उसको हरिनाम भी नहीं पता था, लेकिन अब वो भगवान की भक्ति करने लगा तो देखिए कितना मान सम्मान, उसके ही साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको आकर मान सम्मान, नहीं तुम बताओ ये कैसे होता है, आप बताइए ठीक से। लेकिन भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, ये भगवान भेज की, भगवान भेज देते हैं, जब भगवान की कृपा किसी जीव पर हो जाती है तो थोड़ा बहुत मान सम्मान स्वाभाविक है, लोग देते हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा, आप सब भी कहीं ऐसे धोती कुर्ता तिलक लगा कर जाते हैं या ऐसे ही जाते हैं, लोगों को पता है कि आप किसी संस्था से, आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, तो लोग मान सम्मान देते हैं। व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए कभी भी, ये जान लेना चाहिए कि ये मान सम्मान मेरे लिए नहीं, क्योंकि जहां अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो पतन का कारण है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अहंकारी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अहंकारी व्यक्ति को पता होता है कि मैं बहुत अहंकारी, वो तो सोचता मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन अहंकार बढ़ जाता है। इसीलिए इसको त्यागना चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए, नाश का कारण है ये, सारे जीवन का, भक्ति का नाश कर देता है ये अहंकार, क्योंकि भगवान को हम भूल जाते हैं, हम इन चीजों के स्रोत को भूल जाते हैं। जो चीजें हमें मिल रही हैं, चाहे वो मान सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, इसका स्रोत कौन है, कहां से आ रहा है, भगवान से। तो अहंकार में हम उसको भूल जाते हैं कि मेरे कारण हो रहा है, मैंने इतना बड़ा किया इसीलिए लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं। नहीं, क्या मान सम्मान है व्यक्ति का, जब तक वो कृष्ण का भक्त है, जब तक वो भक्ति कर रहा है, जब कर रहा है, तब तक उसका मान सम्मान है, नहीं तो कौन मान सम्मान देगा। एक बार एक गधे के ऊपर भगवान के विग्रह को रख दिया गया, तो भगवान का विग्रह गधे के सर पर था, गधा बड़ा सोचने लगा कि कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग आकर उसको दंडवत कर रहे थे, वो दंडवत उसको नहीं कर रहे थे, वो तो उसके सर पर जो भगवान के विग्रह रखे थे उनको कर रहे थे, लेकिन गधे को तो दिख नहीं रहा था, अब ऊपर थोड़ी उसको दिखेगा सर में क्या है, तो वो देखता था, अरे ये भी आके मुझे दंडवत कर रहा है, बहुत अच्छी बात, अरे ये भी आ रहा है, जो आ रहा है दंडवत कर रहा है, अहंकार हो गया कि मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हो गया हूं, और फिर अहंकार में उसने अपने पीठ पर, अपने सर पर जो भगवान का विग्रह था उसको उठाकर फेंक दिया गुस्से में, मैं क्यों करूं, और जैसे ही फेंका लोगों ने डंडा लेकर इतना मारा उसको, इतना मारा कि भगवान का विग्रह गिरा दिया। तो तब उसको समझ में आया कि मान सम्मान, ये जो दंडवत था ये मेरे लिए नहीं था, वो तो मेरे सर पे भगवान थे। इसी तरह भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, कोई आकर उनको दंडवत करे तो गधे की तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे दंडवत कर रहे हैं, नहीं तो एक दिन इतने दंडे पड़ेंगे, इतने दंडे पड़ेंगे। याद रखना चाहिए स्रोत को कि ये मान सम्मान, ये जो भी चीजें ऐश्वर्य हमें मिल रहा है, जो कला है, सब भगवान से आती है। तो अहंकार में व्यक्ति मूल स्रोत को भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाता है। क्या गुण है मेरे अंदर, क्या जो मेरे अंदर कला है, क्या शक्ति है, क्या बुद्धि है, ये सब कृष्ण से आई है। अहंकार में व्यक्ति भूल जाता है। इसीलिए अहंकार को त्यागना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब अहंकार, विशेष करके जैसे हम लोग एक संस्था में हैं, तो जब संस्था में रहकर हम लोग अहंकार करते हैं तो केवल हमें नहीं पूरी संस्था को नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? जो व्यक्ति अहंकारी है वो दूसरे को ऊपर आने नहीं देता। मान लीजिए वो नेता है तो वो दूसरे को कभी ऊपर नहीं आने देगा, क्यों? मेरे से आगे नहीं जाना। और ऐसा व्यक्ति भविष्य के लिए संस्था के लीडर्स, नेताओं को उत्पन्न नहीं करता, बढ़ने नहीं देता, उनकी कला को, उनकी क्षमता को, दक्षता को मार देता है केवल अहंकार से। तो भविष्य में अगर हमारे अच्छे दक्ष नेता नहीं होंगे इस जो संस्था है इसको चलाने वाले, तो कैसे संस्था चलेगी? इसीलिए अहंकार को त्यागना चाहिए। दूसरी चीज संस्था को नुकसान होता है कि अहंकारी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जो उसका मत है उसको ज्यादा महत्व देता है संस्था की प्रगति से। हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब मिलकर संस्था की प्रगति के लिए कार्य करें, अपनी प्रगति के लिए नहीं। हमारी प्रगति तो हो ही जाएगी। व्यक्ति अगर बोट में बैठा है और सारे लोग प्रयास करें कि किसी तरह बोट समुद्र को पार कर जाए, तो फिर जो उसमें बैठा है वो तो पार होगा ही, उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? उसको चिंता करनी है कि बोट पार हो, क्योंकि बोट पार नहीं होगी तो सारे डूबेंगे और वो भी डूबेगा। तो अहंकारी व्यक्ति संस्था के उद्देश्य को महत्व नहीं देता, अपने मूल, अपने व्यक्तिगत मत को ज्यादा महत्व देता। तो अहंकार क्या है? अहंकार ये है, ये स्थापित करना कि कौन सही है। प्राइड मीन्स हु इज राइट, कौन सही है इसको स्थापित करना। और नम्रता है क्या सही है उसको स्थापित करना, व्हाट इज राइट। तो क्या सही है वो जरूरी है, कौन सही है वो जरूरी नहीं है। जब व्यक्ति ये स्थापित करने का प्रयास करता है कि मैं सही हूं, तो अहंकार है। इसलिए जब दो भक्तों के बीच में मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उनको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि कौन ज्यादा सही है, मैं सही हूं या वो सही है। हमें प्रयास करना चाहिए क्या सही है। अगर उसके लिए हमें स्वीकार करना है अपना पराजय, स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, जो संस्था के लिए सही है इसको करना। तो इसीलिए संस्था के उद्देश्य को आगे नहीं रखा जाता। और इसके कारण तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है संस्था को, संस्था टूट जाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठों की स्थापना की, गौड़िया मठ एक था सब। लेकिन उनके जाने के बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि सब लोगों ने अपने अपने मत को ज्यादा महत्व दिया, अब संस्था को छोड़कर, मठ को छोड़कर, अपने अपने मतों को या अपने अहंकार को, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दिया, इसीलिए वो टूट गया, एक नहीं रहा। अन्यथा प्रभुपाद को कोई आवश्यकता नहीं थी इस्कॉन बनाने की। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभुपाद ने इस्कॉन क्यों बनाया, जब उनके गुरु ने गौड़िया मठ बनाया था तो फिर प्रभुपाद को क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उनके जाने के बाद टूट गया और प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ देखकर कि उनके ही गुरु भाई जो सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य, वो अपना अपना दो दो मठ लेकर बिखर गए। और इसी कारण से प्रभुपाद को एक अलग संस्था स्थापित करनी पड़ी। प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां से उन्होंने लगातार पत्र लिखे अपने गुरु भाइयों को, आप लोग आइए, मदद कीजिए, प्रचार करेंगे, मिलकर प्रचार करेंगे। उस एक वर्ष तक प्रभुपाद ने संस्था नहीं बनाई, क्योंकि प्रभुपाद बारंबार पत्र लिखते थे, आप आइए हम सब मिलकर, गौड़िया मठ के सन्यासियों को, गौड़िया मठ के अपने गुरु भाइयों को उन्होंने लिखा, हम सब मिलकर प्रचार करेंगे, आइए मदद कीजिए। एक व्यक्ति ने मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, तो फिर प्रभुपाद क्या करते हैं? और उसके बाद प्रभुपाद का भाव बदल गया। फिर प्रभुपाद ने पत्र लिखे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल हमारे लिए वहां से मृदंग भेजिए और विग्रह भेजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। अब फिर प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने क्यों संस्था बनाई, उनको ये उत्तर देना चाहिए, प्रभुपाद ने इसलिए नहीं बनाई कि वो अपना कोई अहम या अपना कोई महत्व दिखलाना चाहते, तो वो तो चाहते थे मिलकर काम करें। तो इस तरह से संस्था टूट जाएगी अगर हम लोगों ने मिलकर काम नहीं किया, सहयोग की भावना नहीं हुई, नम्रता नहीं हुई। तो ऐसे अहंकार को त्यागा जाता है नम्रता से। इसीलिए भगवान जब भगवद गीता में ज्ञान के लक्षणों का वर्णन करते हैं, 20 गुणों का उन्होंने वर्णन किया, और सबसे पहला गुण वो कहते हैं अमानित्वम। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिराजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रहः। और प्रभुपाद कहते हैं इन सारे गुणों में से वो तीन गुणों को लेते हैं, और सबसे पहला अमानित्वम। प्रभुपाद कहते हैं बहुत आवश्यक है, बाकी सब आवश्यक है, 20 के 20 गुण आवश्यक हैं, लेकिन तीन गुण वो कहते हैं बहुत आवश्यक है। तात्पर्यों में उन्होंने उस तात्पर्य में लिखा और उसमें कहा अमानित्वम बहुत आवश्यक है, ये गुण कि व्यक्ति नम्र रहे। तो नम्रता से अहंकार को त्यागा जाता है। हमें एक छोटे बच्चे के समान होना चाहिए। जीसस ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी, उन्होंने एक छोटे बच्चे को बुलाया, उसको खड़ा किया और कहा जो व्यक्ति इस बच्चे के समान है वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है, इज फिट टू एंटर किंगडम ऑफ गॉड, वो व्यक्ति जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को कोई अहंकार नहीं, अहंकार से रहित है वो। छोटे बच्चे अहंकार से रहित होते, आप उनको थप्पड़ मार दो फिर घूम घाम के आ जाते हैं आपके पास, बड़े होने के बाद थप्पड़ मारो जीवन भर नहीं आएंगे आपके पास, है ना। तो छोटे बच्चे, उनको क्या अहंकार है, कुछ भी बोल दो वो अगले दिन भूल भी जाते हैं, उनको कुछ अगले दिन एक घंटे में आपस में ऐसा लड़ते हैं कि मानो इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो जीवन भर एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे, आधे घंटे बाद एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, कोई अहंकार नहीं। तो जीसस ने बताया बच्चे की तरह होना चाहिए। तो हम सबको बच्चों की तरह सीखिए, बच्चों से सीखिए कैसे हमें रहना चाहिए, कोई अहंकार नहीं। बच्चों को उनको कह चुपचाप बैठ जाओ, इधर वो बैठ जाते हैं, तो ऐसे एकदम कोई उनको ये नहीं कि अरे मुझे कह दिया, जानते हो कौन हूं मैं। तो बच्चा होना चाहिए। और दूसरा, हमें जो आशीर्वाद मिले हैं भगवान से भक्ति करते हुए, उनको गिनना चाहिए। हमारी कमियों को गिनने का प्रयास मत कीजिए कि क्या मुझे और अभी ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल जाता बड़ा अच्छा होता, कि मुझे थोड़ा मंदिर छोटा है तो बड़ा हो जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता वो हो जाता। जो दिया है भगवान ने उसको गिनिए, गिनिए मतलब उसकी सराहना कीजिए। गिनिए मतलब ऐसे नहीं कि वो बुक बना के बैठे हैं कि नहीं अगले दिन गिन रहा है, गिनना मतलब उसकी सराहना कीजिए कि कैसे इन इन आशीर्वादों को भगवान ने मुझे दिया। और बहुत से आशीर्वाद हैं, चाहे आप घर में हो, ब्रह्मचारी हो, कहीं हो, सन्यासी हो, सबके लिए आशीर्वाद, उनको देखिए, उनकी सराहना कीजिए, नम्रता आ जाएगी। क्यों नम्रता आएगी? जान जाएंगे कि भगवान ने कितना कुछ दे दिया, मैंने तो नहीं प्राप्त किया, मेरी तो योग्यता नहीं थी, भगवान ने दिया। तो ऐसे पृथु महाराज थे। तो जब ऐसे सुना विदुर ने, तो विदुर ने प्रश्न किया मैत्री मुनि से कि आपने सुनाया कि हाँ अच्छा राज्य कर रहे थे, सब ठीक है, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। अरे पृथु महाराज की कथा है। वैसे आगे जब अध्याय समाप्त होगा, पृथु महाराज जब भगवान के धाम जाएंगे तो कई श्लोकों में इनकी कथा का श्रुति फल दिया गया है कि कैसे श्रुति का क्या फल है, फल श्रुति कहते हैं उसको, कि इनकी कथा सुनने का, और ऐसा कहा गया कि पृथु महाराज की कथा तो हर भक्त को सुननी चाहिए, कम से कम 10 श्लोकों में ये कहा गया कि ये कथा सुनने से ये होता है, इनकी कथा सुनने से ये होता है। हमने आपको शुरुआत में नहीं सुनाया, सुना देना चाहिए था, आपको बड़ी रुचि आ जाती, लेकिन अब अंत में कथा के सुनाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं पृथु महाराज की कथा का ध्यान से श्रवण करने से। तो विदुर कह रहे हैं कि सुनाइए, पृथु महाराज की कथा है इतने महान राजा की, तो थोड़ा और विस्तार से संतुष्ट नहीं हुए। देखिए ये गुण है एक भक्त के श्रवण के लिए। विदुर ने, आपको याद होगा, तीसरे स्कंद में भी जब शुरुआत में ही प्रश्न पूछे, मैत्रेय मुनि से मिले ही थे तभी उन्होंने प्रश्न पूछे, और तभी उन्होंने कह दिया क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराना क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वताम् न सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वताम् न। बताइए अवतार भेदे, भगवान की अलग अलग लीलाएं, अलग अलग अवतार बताइए, क्यों? मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वताम् न सुश्लोक मौले, भगवान की कथाएं सुनने में, उनके अमृत को कथामृत सुनने में मन कभी तृप्त नहीं होता, इसीलिए आप सुनाते जाइए। तो अब भी इतना सुन चुके हैं थोड़ा बहुत, अब भी वही कह रहे हैं कि आप रुकिए नहीं, आप सुनाइए। तो फिर 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक फिर मैत्रेय मुनि महाराज पृथु के राज्य का वर्णन करते हैं कि वो कैसे राजा थे और कैसे राज्य किया करते थे। तो बहुत सुंदर वर्णन है कि महाराज सबको समान देखते थे पृथु महाराज, और सबके ऊपर शासन करते थे। एक महत्वपूर्ण बात लिखी है श्लोक में कि सब उनके अधीन थे, वो सबको नियंत्रण किया करते थे केवल भक्तों को छोड़कर। भगवान के भक्तों को वो कभी नियंत्रण नहीं करते थे, तो बाकी सबको नियंत्रण किया करते थे, बाकी सब उनके अधीन थे, लेकिन वो भक्तों के अधीन थे, वो भगवान के भक्तों को कभी नियंत्रण नहीं करते थे। आगे आएगा पृथु महाराज गुणगान करेंगे। तो ऐसे पृथु महाराज के राज्य में सब कुछ सुखी थे सब लोग, ऐसे वर्णन हुआ। और एक समय पृथु महाराज ने इच्छा की कि उन्हें यज्ञ करना है, तो उन्होंने काफी विशाल यज्ञ किया, और उस यज्ञ में अब पृथु महाराज अपने जो नागरिक हैं, जो भी वहां पर सारे उपस्थित थे, उनको उपदेश देते हैं। तो बहुत सुंदर उपदेश इनके 21वें श्लोक से लेकर 36 श्लोक तक उपदेश हैं। 36 के बाद भी उनके उपदेश हैं, लेकिन वो विशेष उपदेश हैं, तो उसका वर्णन आगे करेंगे। तो 21वें श्लोक से लेकर वो 36वें श्लोक तक उपदेश करते हैं। तो क्या दर्शाते हैं, वो प्रारंभ करते हैं, खड़े हुए और बहुत मधुर वाणी में उन्होंने बोला। तो उन्होंने सबसे पहले नम्रता दर्शाई, राजा हैं सब उनके अधीन हैं, तो वो आदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सब जो यहाँ साधु संत लोग उपस्थित हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कृपया आप उसको स्वीकार कीजिए। ये नम्रता है, तो नम्रता से प्रचार होता है। अब पृथु महाराज प्रचार करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहला गुण दिखा रहे हैं नम्रता। प्रभुपाद भी कहते हैं, आप अगर किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास जाओ जो बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणगान है, बहुत उसके अंदर भौतिक गुण है, विद्या है, तो जब उसके पास जाओ जैसे वो कहे तो पहले सुन लो, और फिर उसको कहिए कि अब आप ये सब जो आपके पास बहुत ज्ञान वगैरह, ठीक है, इसको साइड में रख दीजिए, अब हमारी बात सुनिए। तो पहले नम्रता दिखानी चाहिए। तो प्रचार करना है तो नम्र होना आवश्यक है। अहंकारी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति केवल अपना गुणगान करता है, नम्र व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है। और सही दृष्टि में प्रचार है भगवान का गुणगान, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। सारी दुनिया में जहाँ लोगों को मालूम भी नहीं था कृष्ण का नाम, वहां भी उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो शिल प्रभुपाद ने जैसे किया ऐसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पृथु महाराज। तो पृथु महाराज की परंपरा को ही पालन किया प्रभुपाद ने। तो पृथु महाराज ने नम्रता दर्शाई, बहुत नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर तो योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो बुद्धिमान व्यक्ति को जो भी उसको पता हो बताना चाहिए। और फिर वो कहने लगे, उन्होंने जब उपदेश दिया कि मैं ऐसा राजा नहीं हूं कि जो केवल आपसे कर इकट्ठा करता रहूंगा। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है धार्मिकता या आध्यात्मिक प्रगति को करवाना। अगर राजा आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न नहीं कर रहा तो कोई लाभ नहीं है, कितना ही टैक्स ले ले वो कोई लाभ नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये कर्तव्य है राजा का। आजकल लोग केवल टैक्स लेते हैं लेकिन कोई आध्यात्मिक वातावरण नहीं, कहीं संरक्षण नहीं है मंदिरों को या अन्य स्थानों को, तो इसीलिए ये आवश्यक है। तो पृथु महाराज उन्होंने कहा कि मैं केवल कर इकट्ठा नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि जो सही कार्य, और सही कार्य है धर्म का प्रचार करना, ये प्रमुख उसका कार्य है। और फिर उसने प्रार्थना की, पृथु महाराज ने प्रार्थना की अपने सभी नागरिकों से कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी अपना कर्तव्य है उसको करें, लेकिन आपका मन और बुद्धि भगवान में लगाकर करें। ऐसे कर्तव्य नहीं करें, भगवान को अलग रख के कोई कर्तव्य नहीं करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका भी लाभ होगा, मेरा भी लाभ होगा। अगर कोई राजा धर्म के अनुसार राज्य करता है, लोगों को धार्मिकता में लगाता है, तो लोग जो पुण्य करते हैं वो पुण्य उसको मिल जाता है, उसका एक भाग उसको भी मिलता है राजा को। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रजा है, वो सब कर रहे हैं, उसका एक भाग राजा को मिलता है केवल सुविधा प्रदान करने से। और अगर राजा धार्मिक सुविधा प्रदान नहीं करता है लोगों को, नागरिकों को, तो फिर उनके पाप का भागी बनता है, फिर वो जो पाप करते हैं उसका भाग उनको मिल जाता है। तो इसीलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि आप सब अपना कर्तव्य कीजिए, धार्मिकता में लगे रहकर मन और बुद्धि आप पूर्ण रूप से भगवान में लगाइए अपनी मन और बुद्धि को, और इस तरह से आप भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन पालन कीजिए। और फिर पृथु महाराज ने आगे कहा कि मान लो लोगों ने कहा भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान है भी या नहीं है, वेण तो था आपका पिता, उसने तो सब बंद करवा दिया। तो पृथु महाराज कहते हैं भगवान है, और इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि देखिए कितना अलग अलग हम जब देखते हैं सारे जगत में, तो अलग अलग लोग इस जगत में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रूप को लेकर आए हैं, कोई बहुत सुंदर है कोई सुंदर नहीं है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, किसी के पास धन है किसी के पास नहीं है। तो पृथु महाराज कहते हैं ये प्रमाण है कि भगवान है। तो मानो लोगों ने पूछा अरे ये कैसे प्रमाण, ये तो कर्म से होता है, कोई कह सकते हैं ना कि हम लोग कहते हैं किसी को सुंदर शरीर मिलता है किसी को सुंदर नहीं मिलता, धन नहीं, ये तो कर्म का नियम है, इससे कैसे हम सीख सकते हैं कि भगवान है? तो कर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कर्म अपने आप में तो जीवित नहीं है, चेतना नहीं है कर्म में, कर्म तो एक नियम है, जब नियम है तो नियम बनाने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए पृथु महाराज कहते हैं प्रमाण है भगवान है। और मैं नहीं कहता हूं केवल, ये तो सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा है, मनु ने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रहलाद ने कहा है, शिव ने कहा है, तो सबका उद्नाम देने लगे कि ये बड़ी बड़ी अधिकारी लोग हैं और इन लोगों ने इस चीज को कहा है। तो इसीलिए ऐसे मैं इस बात को कह रहा हूं, इससे ही मानना जा सकता है कि भगवान का अस्तित्व है और हमें भगवान को मानना चाहिए। और कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, उसके लिए वो ये वाला श्लोक कहते हैं जो आज हमने पढ़ा, यत पाद भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा। केवल भगवान की सेवा के द्वारा ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। और वो कहते हैं कि अगर जीव भगवान की सेवा में लग जाता है तो तो उसके सारे भौतिक जो गुण हैं वो नाश हो जाते हैं, उसके अंदर भौतिक गुण नहीं रहते हैं। भगवान की सेवा में लगा है, उसके सारे गुण दिव्य हैं, सारे आध्यात्मिक हैं, अगर पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। तो ऐसे उन्होंने उपदेश दिया और कहा कि हर एक का कर्तव्य है कि भगवान को समर्पण करें, और अगर आप लोग जहां भी हैं अपनी अपनी स्थिति में वहीं रहकर आप कर्तव्य कीजिए, और इन कर्तव्यों को करते हुए नवदा भक्ति का पालन कीजिए। अर्थात कर्तव्यों को त्यागना नहीं है, उन कर्तव्यों के साथ साथ श्रवण कीर्तन इत्यादि करना है। तो ऐसा उन्होंने कह दिया और फिर वो एक चेतावनी देते हैं। तो ये 36वें श्लोक तक उन्होंने कहा, उसके आगे अब वो चेतावनी दे रहे हैं 37वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक। क्या चेतावनी देते हैं? भगवान की शरण लेनी है, चरण कमलों की सेवा करनी है, यही भक्ति है, नवदा भक्ति करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि वो क्षत्रिय, वो राजा जो ब्राह्मणों का पालन नहीं करता या ब्राह्मणों का आदर सम्मान नहीं करता, वो राजा रह नहीं सकता, वो सही राजा नहीं है। अर्थात एक चेतावनी देते हैं कि भक्ति करते हुए भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए भगवान की सेवा करते हुए। तो वो कहते हैं कि भक्त कौन है? भक्त वो हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान यज्ञ में अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्नता भक्त के मुख से होती है। जब अर्थात क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, उसमें आहुतियां दे, वो भगवान के लिए बनी है। आप देखिए जितने भी मंत्र बोले जाते हैं अंत में बोलना ही पड़ता है कृष्णम अर्पणस्तु, भगवान कृष्ण को अर्पण करें। तो है वो यज्ञ की अग्नि से भगवान खाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों को खिलाया जाता। इसलिए नियम ये है कि बड़े बड़े यज्ञ करने से अच्छा है भक्तों को घर पर बुलाकर प्रसाद खिलाना चाहिए। पृथु महाराज कह रहे हैं कि भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इतना बड़ा वो यज्ञ करो, वो पता नहीं क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं। पृथु महाराज कह रहे हैं सिंपल, भक्तों को बुलाओ प्रसाद खिलाओ, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्तों के मुख से खाते हैं। भगवान भक्तों के मुख से भी ग्रहण करते हैं, यज्ञ की अग्नि से ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए भक्तों के मुख, पृथु महाराज कह रहे हैं कि भक्तों के मुख से भगवान खाकर अति प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिय हैं भक्त भगवान को, और इतने प्रिय हैं कि यज्ञ से ज्यादा उनको वो महत्व देते हैं। तो इसीलिए उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को उसको नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पृथु महाराज कह रहे हैं, देखिए पृथु महाराज की भक्ति, पृथु महाराज कहते हैं मैं भगवान के भक्तों की चरण धूलि अपने सर पर धारण करता हूं। ये एक मार्ग है उनकी उपासना का, भक्तों की उपासना उनकी चरण धूलि सर पर धारण करनी चाहिए। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मेरी यही प्रार्थना है आप सबके, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भक्तों की चरण धूलि मेरे सर पर पड़ी रहे, हमेशा मैं अपने सर पर धारण कर सकूं, मस्तक पर धारण कर सकूं। ये बहुत जगह पर वर्णन किया गया है कि भक्तों की चरण धूलि, जैसे प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं, जल भरत वर्णन करते हैं भागवत में, कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक भक्तों के चरण धूलि को कोई सर पर धारण नहीं करता, भक्ति के पद पर बढ़ ही नहीं सकता। और जड़ भरत भी इसी बात को कहते हैं, महत पदम रजोभिषेकम, महत यानी भक्तों के चरणों की धूलि जब तक सर पर नहीं लगाई जाए भक्ति में प्रगति नहीं है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भूंत अवशेष तीन महाबल। भक्ति में तीन महाबल हैं, बल तो हैं लेकिन महाबल, हमारे जो आंदोलन है इसमें सब कुछ महा है, हमारे प्रभु महाप्रभु, हमारा प्रसाद और हमारा बल महाबल। तो महाबल, तीन महाबल क्या हैं? भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्त पद जल, भगवान ने स्वयं जब पांव धोए सुदामा के तो उस जल को सबको दिया था, तो भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भूंत अवशेष, और भक्तों के द्वारा भक्तों का महाप्रसाद। ये तीन महाबल हैं भक्ति में। अगर कोई इनको ग्रहण करता है तो निश्चित उसकी प्रगति होगी। तो ऐसा कई स्थानों पर कहा गया है कि किस तरह से भक्तों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। और यहीं पृथु महाराज इसको कह रहे हैं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भक्तों की चरण धूलि, दरअसल मस्तक का जो आभूषण है वो भक्तों की चरण धूलि है। अगर किसी के मस्तक पर भक्तों के चरण धूलि है तो वो सबसे सुंदर व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसको जो लाभ होने वाला है वो सर पर सोने का मुकुट पहनने वाले को नहीं होने वाला। सोने का मुकुट पहनने वाला तो संसार सागर में डूबने वाला है, तो इसलिए उसका कोई लाभ नहीं। तो ऐसे पृथु महाराज कहते हैं कि भक्तों को कभी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा हमेशा होनी चाहिए। तो फिर आगे अंतिम भाग में पृथु महाराज का गुणगान सारे जो वहाँ उपस्थित नागरिक थे वो करने लगे। तो उन्होंने पृथु महाराज से कहा कि आप तो इतने महान राजा हैं और हमें बड़ा गर्व है, हम बहुत आनंद में हैं कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने तो वो काम किया है जो प्रहलाद ने किया। आपने अपने पिता वेण को मुक्त कर दिया, क्योंकि वेण इतना पापी था, निश्चित नरक में गया होगा, लेकिन आपके कार्यों के द्वारा वो मुक्त हो गया, जैसे प्रहलाद के कार्यों के द्वारा हिरण्यकश्यपु मुक्त हो गया है। तो हिरण्यकश्यपु को मुक्त करने में प्रहलाद का हाथ था, प्रहलाद के कारण मुक्त हुए ना, नहीं तो नरक में जाते, कितना पाप कर रहे थे। ये तो प्रहलाद ने प्रार्थना की तो भगवान ने मुक्त कर दिया। तो ऐसे ही पृथु महाराज ने अपने पिता वेण को मुक्त कर दिया, ऐसा वो वर्णन अंत में करते हैं। और फिर उन्होंने पृथु महाराज को कई आशीर्वाद दिए और फिर अब ये अध्याय समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इसी यज्ञ में पृथु महाराज की भेंट चार कुमारों से होने वाली है। चार कुमार वहाँ पर आएंगे बिना बुलाए, उनको इनविटेशन नहीं भेजा था पृथु महाराज ने, लेकिन वे लोग वहाँ पर आए। तो चार कुमारों ने क्या उपदेश दिए, कल बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, भागवत धर्म का वर्णन चार कुमार करने वाले हैं। और फिर उसके बाद का अध्याय और महत्वपूर्ण है कि कैसे पृथु महाराज भगवान के धाम वापस जाते हैं।